الله الرسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وحضرات. ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ اپنے جمال و کمال اور اپنی خوبیوں کا اظہار دوسروں پر کرے, اور دوسرا یہ کہ سب لوگ اس کی تعریف کریں. انسانی فطرت میں ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان کے کمال کا اظہار اس کے لیے تعریف اور خوبی کا سبب ہی بنے, بلکہ اکثر اوقات زیادہ تر وہ رشک, حسد اور مخالفت کا باعث بن جاتا. اسی لیے درویشوں کے یہاں اس بات کی احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے جمال و کمال کا اظہار از خود نہ کیا جائے, اگر قدرت کی طرف سے اس کا اظہار کہیں ہو جائے تو اور بات ہے, لیکن اس کے لیے کوئی کانشیس ایفرٹ نہ کی جائے کہ میرے جمال و کمال کا اظہار ہو. اسی طرح انسان کی جو فہم و فراست ہے اس کا از خود اظہار نہ کیا جائے, حالات اس کو ظاہر کرتے چلے جائیں وہ اور بات ہے. لاسٹ سنڈے یا شاید اس سے پریویس سنڈے بات ہو رہی تھی ایمان کے تین درجوں کی, کہ ایمان کے تین درجے ہیں, ایمان بالغیب, ایمان بالتقلید اور ایمان بالاستدلال. جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق غور و فکر سے کام لیتے ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ نئے نئے راز کھولتا چلا جاتا ہے, اسرار قدرت کے نئے نئے پرت کھولتا چلا جاتا ہے. یوں ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ ایک نقطے پر جب فکر کی, اس پر غور کیا تو اس سے نئی راہیں کھلی. ان نئی راہوں پر جب انسان غور کرتا ہے, اس پر فکر کرتا ہے, تو مزید چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں. یہ بالکل اسی طرح اس کی مثال ہے جیسے نسلوں کی افزائش ہوتی ہے. تو ایک فکر, ایک معرفت دوسری معرفت کے ساتھ ملتی ہے تو ایک تیسری معرفت جنم لینے لگتی ہے. تو نئی معرفت جو جنم لیتی ہے وہ دوسری معرفت سے ملتی ہے تو ایک اور نئی معرفت جنم لیتی ہے. تو یوں غور و فکر کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو فقیر کی زندگی میں شروع سے لے کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے. اس میں اس وقت بریک آ جائے گا جب انسان پر اس کے نفس کی خواہشات غلبہ پانے لگیں گی. تو یہ غور و فکر کا اور نئے نئے نقطوں کے سامنے آنا بند ہو جائے گا, پھر وہ سلسلہ رک جائے گا. جب غور و فکر کرتا رہتا ہے اور نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں انسان کے, اس کے نتیجے میں اس کے اندر مومن کی سی فہم و فراست, جس کا ذکر قرآن میں رب نے کیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے, تو انسان کو وہ فہم و فراست حاصل ہونے لگتی ہے. لیکن اس فہم و فراست کو اس کی ابتدائی ڈگری سے ایک بہتر ڈگری کی طرف لے جانے کے لیے بھی غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ دنیا رب تعالی نے, میں اس کو یہ آسان لفظوں میں کہا کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں جلدی آ جائے, کہ یہ दुनिया रब ताला की एक पॉटपुरी है, जैसे पॉटपुरी हम घर में रखते हैं, जमा करते हैं, तो आपने देखा कि उसमें अनवाव अकसाम के फूलों की पत्तियां खुश की भी होती हैं। तो मैं इसे रब ताला की पॉटपुरी कहता हूं। ये जहां इतनी खुश रंग तखलीक है रब ताला की, जिसमें इतनी डाइवर्स चीजें इंसान को मिलती हैं, उसके साथ साथ ये बच्चों का एक खेल होता है, जिक्सा पजल जिसे कहते हैं, उसमें छोटे छोटे पीसेस भी होते हैं, बड़े पीसेस भी होते हैं। तो बच्चे की जहानत को बढ़ाने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा करने के लिए उस गेम का सहारा लिया जाता है कि बच्चे को दी जाती है जिक्सा पजल। तो बच्चा उन छोटे बड़े टुकड़ों को अपनी अपनी जगह रख के उसको एक शेप देने की कोशिश करता है, तो यूं उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, उसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, गौर करने की आदत डेवलप होती। उस जिक्सा पजल के अंदर एक छोटा सा पीस भी अगर गलत जगह रख दिया जाए तो वो शक्ल मुकम्मल नहीं होती है। तो ये जहां ये कायनात इतनी रंगीन है और इतनी खुशरंग है, वहां ये जिक्सा पजल भी है। रब ताला अपने इस जिक्सा पजल से शेप को एक मुकम्मल शक्ल दिए हुए है और उसके लिए छोटे छोटे पीसेस, बारीक से बारीक पीस से बड़े से बड़ा पीस, सबको अपनी अपनी जगह पर उसे जमाया हुआ है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, हर इंसान में एक नई और अलहदा से एक खूबी अल्लाह ने रखी है और कुछ खामियां रखी हैं। दूसरे इंसान में पहले इंसान वाली खामियां नहीं है और न पहले इंसान वाली खूबियां हैं, दूसरे इंसान में अपनी ही अलहदा खूबियां हैं, अलहदा खामियां हैं। तो जिस तरह से हम गेयर्स को अगर इकट्ठा करके शक्ल देना चाहें कि वो मशीन चलने लगे, तो उसमें मेल फीमेल गेयर्स होते हैं, जो पीसेस होते हैं वो मेल फीमेल पीस होते हैं, जो एक दूसरे से हम जोड़ देते हैं तो वो एक मुकम्मल चीज बन जाती है। इसी तरह इंसानों की खूबियां एक दूसरे से अलहदा हैं, खामियां एक दूसरे से अलहदा हैं, तो एक इंसान दूसरे शख्स की खामियों में अपनी खूबियां शामिल करके एक मुकम्मल शक्ल बनाता है। इसीलिए आमतौर पर देखेंगे आप कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को फहम व फरासत अता की है उनके पास रिस्क नहीं होता, जमा पूंजी नहीं होती कि वो उससे कारोबार कर लें, और जिनके पास रुपया पैसा है, माली वसाइल होते हैं, उनके पास अक्ल नहीं होती, तालीम नहीं होगी, तालीम वाले शख्स के पास वसाइल नहीं होंगे। तो ये सब जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। यूं दुनिया का कारोबार चलता है और इंसान की रोजी का बंदोबस्त होता रहता है। एक ऐसे ही साहब थे जिनको रब ताला ने फहम फरासत बहुत अता की थी, अकल अता बहुत की थी, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे। तो गरीब परेशान रहता था कि मेरे पास अकल है, मेरे पास फहम फरासत है, दानाई है, लेकिन वसाइल नहीं है कि मैं अपनी इस अक्ल दानिश और दानाई को इस्तेमाल करके तो रिस्क पैदा कर लूं अपने लिए। तो गरीब दो वक्त की रोटी को तरसता रहता था। तो एक रोज अपनी परेशानी के आलम में चलता हुआ शहर से बाहर चला गया, वहां काफलों की गुजरगाह थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि काफला चला आ रहा है जिसमें ऊंटों पर बेशुमार सामान लदा है और वो कितार खत्म होने को आती ही नहीं ऊंटों की। तो बिलाखिर जब घंटे दो घंटे के बाद वो कितार खत्म हुई और आखिरी ऊंट उसके सामने तक आया, तो उस ऊंट के पीछे पीछे एक आदमी था। तो इस साहिबे अक्ल दानिश ने उस आदमी से पूछा कि भाई इतना लंबा चौड़ा काफला सामान्य तजारत का, ये किसका है? लगता है कोई बहुत ही बड़ा सौदागर है। तो उसने कहा कि वो सौदागर मैं ही हूं। उसने कहा कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो ये ऊंटों पर सामान क्या लदा है? तो सौदागर ने कहा कि इस पर गेहूं है, गंदम है। तो ये जो राइट साइड है ऊंट की, उसमें 100 किलोग्राम गंदम है, और ऊंट की जो लेफ्ट साइड है उसमें 100 किलो रेत है। तो उसने कहा कि रेत इसका क्या करोगे तुम, ये कहां सामान्य तजारत कौन सा है? उसने कहा कि नहीं, ये सामान्य तजारत नहीं है रेत। इधर हकीकत इस सामान को ऊंट की पीठ पर बैलेंस करने के लिए 100 किलोग्राम वेट के अगेंस्ट दूसरी तरफ 100 किलोग्राम रेत डाली है, ताकि ऊंट के चलने से ये स्लिप होके नीचे ना गिरे सामान। तो ये चूंकि साहिब इल्म था, साहिब अक्ल दानिश था, तो उसने कहा कि ये भी कमाल कर रहे हो तुम। अगर दोनों तरफ ही तुम गेहूं डाल दो तो ऊंटों की तादाद आधी रह जाएगी, तो इनके चारे का खर्च और इनके पानी का खर्च कम हो जाएगा, इनको संभालना तुम्हारे लिए आसान होगा। तो उसने कहा कि ये ख्याल मुझे आया नहीं जब मैं लोड कर रहा था, लेकिन अब आइंदा इसी तरह करूंगा। तो तुम तो बड़े साहिब अक्ल दानिश हो, तो यकीनन तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा ऊंट होंगे सामान्य तजारत के। तो कितना माल है तुम्हारे पास तजारत का और कितने ऊंट है, मैं सब खरीद लेता हूं तुमसे। तो उसने कहा कि मेरे पास एक भी नहीं है, मैं तो बल्कि दो वक्त की रोटी की तलाश में निकला हुआ हूं। तो उसने कहा कि फिर मैं इस अक्लो दानिश से बाज आया जिससे मुझे रोटी भी नसीब ना हो, मैं बेवकूफ ही भला। बात यह है कि रब ताला इस कायनात को चलाता है, और कायनात को चलाने के लिए हर तरह के इंसानों की जरूरत है। वो रब ताला ने उसको, हम लॉ ऑफ नेचर की जो चार जेली लॉज हैं उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि पहला हिस्सा लॉ ऑफ नेचर का लॉ ऑफ वननेस है। यहां किसी नशिस्त में लॉ ऑफ नेचर पर जब बात हुई थी तो ये जिक्र आया था कि लॉ ऑफ नेचर चार सब लॉज सब आर्टिकल से बना है। उसमें जो पहला सब लॉ है वो है लॉ ऑफ वननेस, और दूसरा लॉ ऑफ डाइवर्सिटी है। तो ये लॉ ऑफ डाइवर्सिटी के तहत रब ताला ने इसको यूं बनाया। अब सवाल ये है कि ये फकीर लोग, ये इस बात से समझ आ जाती कि जो फकीर दरवेश जिनके पास इल्म होता है, जिनके पास अक्ल होती है, जिनके पास फहम होता है, समझ होती है, वो दुनियावी माल और जर से तही दामन रहते हैं, उनके पास इतना ज्यादा माल और दौलत नहीं होता। यह और बात है कि परवरदिगार अपने उन बंदों का एक भरम कायम रखता है कि उनकी जेबें खाली होती हैं, उनके पास कोई ज्यादा माल और दौलत होता नहीं, लेकिन वो दिखाई यूं देता है कि ये दुनिया के बड़े अमीर लोग हैं। तो वो रब ताला असल में इनाम एक दिए हुए होता है कि उनका एक भ्रम कायम रहता है कि ये शख्स बहुत अमीर है। इसके बरक्स आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिनको अल्लाह ने बहुत दुनियावी माल और ज़र से नवाजा है, लेकिन वो अपनी हरकतों से, अपनी शक्ल से, अपनी बातों से वो आपको यूं ही दिखाई देंगे कि शायद इसको रोटी भी मुश्किल से मैसर आती है। वो अल्लाह ताला का अपना एक रंग है, अपने बंदों को वो लोगों से मुमताज रखता है। इसी तरह आप कभी नोट कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये नोन फैक्ट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद दरमियाना था, लेकिन वो लंबे से लंबे लोगों के मजमे में भी खड़े होते थे तो सबसे तवील दिखाई देते थे। तो ये जो साहिब इल्म लोग हैं, कभी इनको आप लोगों के दरमियान खड़े हुए देखिए, वो नुमाया दिखाई देते हैं। इसी तरह उनके पास कुछ होता नहीं, लेकिन वो लोगों को दिखाई देता है कि बहुत ही अमीर लोग हैं। उनकी दुनियावी तालीम कम होती है, लेकिन रब ताला कुछ ऐसी उनकी प्रोजेक्शन देता है कि वो लगता है कि बहुत ही आला तालीम याफ्ता लोग हैं। तो रब ताला उन बंदों को जिन्हें अजीज रखता है वो अपने तरीके से नवाजता है। हमारा मैयार कुछ और है, रब का मैयार कुछ और है। हमारा मैयार दूसरों को जांचने का ये है कि उनके पास कितना मालो जर है, कितना बड़ा ओहदा है उसके पास। लेकिन रब का मैयार अखलाक का है कि मेरे किसी बंदे के अखलाक कितने बुलंद हैं। अखलाक मैं उन मायनों में इस्तेमाल नहीं कर रहा जो बातचीत के लिए इस्तेमाल होते हैं। अखलाक से मुराद है उसका कैरेक्टर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के लिहाज से दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर फाइज हैं। कायनात में सबसे आला अखलाक के मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उन मायनों में अखलाक को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो रब ताला अपने बंदों को अखलाक अता कर देता है, जिसकी वजह से वो मखलूक में इज्जत पाने लगते हैं। वो फकीर जो कुटिया में बैठे हैं, उनके पास वक्त का हुक्मरान भी चलकर जाता है, उमरा भी चलकर उसके पास जाते हैं, और जूता उसकी टूटी हुई झोंपड़ी जहां एक फटी हुई चटाई बिछा के वो बैठा है, जूता झोंपड़ी के बाहर उतारते हैं और वापस जाते हुए उसकी तरफ पुश्त नहीं करते, उल्टे कदम वापस होते हैं। जबकि हुक्मरान कोई और है, और वो हुक्मरान भी इस फकीर के सामने मजबूर है कि वो ताजीम से हाजिर हो और उल्टे पांव वापस चले, उस फकीर की तरफ पुश्त ना करे। ये रब का इनाम है कि अपनी मखलूक में उसे बुलंद कर देगा अपने फकीर को। ये फहम फराज जिसकी बात जहां से चली थी, बल्कि वो मालवजर की बात हो रही है, तो आपसे एक अर्ज कर दूं। एक बड़े नामवर फकीर गुजरे जो मजजूब थे, उन पर जज्ब की हालत ज्यादा तारी रहती थी। वो मशहूर ही बहलुल मजजूब के नाम से हुए, और उनका दौर गालिबन हारून रशीद या मामून रशीद के जमाने का है। तो बहलुल साहब एक दिन दरख्त के नीचे बैठे थे, तो वहां से हाकिमे वक्त की सवारी गुजरी, गालिबन हारून रशीद थे शायद। उन्होंने देखा कि उस दरख्त के नीचे इस काफले की राह गुजर के साथ दरख्त के नीचे बहलुल साहब बैठे हुए हैं, तो हारून रशीद ने अपनी सवारी रोक ली वहां और वजीर से कहा कि ये अशरफियों का एक थैला बहलुल साहब की नजर कर दो, उनकी खिदमत में पेश करो। तो वजीर ने थैला लिया और कहा कि यह हारून रशीद ने आपकी खिदमत में हदिया पेश किया है, इसे कबूल फरमाइए। तो बहलुल साहब ने कहा कि इसको ले जाओ, मुझे इसकी हाजत नहीं है। तो वजीर ने हारून रशीद से कहा कि वो फरमा रहे हैं कि इसको वापस ले जाओ, मुझे इसकी हाजत नहीं। तो हारून रशीद खुद चल के गया और जाके उनसे कहा कि इसे रख लीजिए, मेरे इल्म में ये बात है कि आपका एक एक बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है, तो इससे आपका कर्ज अदा हो जाएगा, इसके रख लीजिए आप। तो बहलुल ने जो जवाब दिया वो भी कमाल का था। उन्होंने कहा कि तुम क्या समझते हो, अगर मेरा रब यह हुकूमत और यह माल तुम्हें देने पर कादिर है तो क्या मुझे नहीं दे सकता, तो मैं तुमसे क्यों लूं, मैं अपने रब से क्यों ना लूं, ले जाओ इसको। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला इल्म और फहम फरासत अता फरमाता है, उनमें यह बेनियाजी भी आ जाती है, उनका अपने रब के साथ ऐसा ताल्लुक जुड़ जाता है कि वो किसी भी हालत के अंदर कितने ही मजबूर क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब ही को अपनी हाजत रवा समझता है। वो कभी किसी गैर अल्लाह से उम्मीद नहीं लगाता, किसी गैर अल्लाह की तरफ अपनी जरूरत को पूरी होने के लिए नहीं देखता। बात हो रही थी इल्म दानिश और फहमो फरासत की। ये इल्म दानिश और फहमो फरासत हासिल करने का आसान तरीन तरीका गौर फिक्र है, और गौर फिक्र दो तरह से किया जा सकता है। शायद किसी नशिस्त में बात हुई भी थी कि हम ज़ाते इलाही पर गौर फिक्र कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम इसरार इलाही पर, इसरार कुदरत पर, कारखाने कुदरत पर गौर फिक्र कर सकते हैं। जहां तक ज़ाते इलाही का ताल्लुक है, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ज़ाते इलाही पर गौर फिक्र न करो कि तुम खो जाओगे, भटक जाओगे, इसलिए कि हमारी अक्ल इतनी महदूद है और ज़ाते इलाही इतनी वसी है कि हमारी अक्ल वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। नतीजा ये होगा कि हम बहक जाएंगे, दिमाग उलट जाएगा, होश और हवास से हमारी हो जाएंगे। तो उसके लिए मना फरमा दिया गया कि ज़ाते इलाही पर गौर न किया जाए कभी, लेकिन कारखाने कुदरत पर जरूर गौर किया जाए, इसरार इलाही पर गौर किया जाए। जो रब ताला ने चीजें तख्लीक की हैं, रब की तख्लीकात पर गौर किया जाए, निजाम कायनात पर गौर कर लिया जाए, तो इस गौर फिक्र के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो या तो फिर इस पर अमल किया जाए कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचान लिया, तो उसके लिए फिर इंसान को अपनी जात से इब्तदा करना होगी। इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी किसी एक नशिस्त में। या फिर दूसरी एक चीज है कि हम कुरान पाक पर गौर करना शुरू कर दें, कुरान पाक की आयात पर, उसके हरूफ पर, उसके अल्फाज पर गौर करना शुरू कर दें और उस पर गौर करने का आसान तरीका यह है कि हम कुरान पाक की तलावत कसरत से शुरू कर दें। कुरान पाक का एक मौजज़ा यह भी है कि जब हम कुरान पाक की तलावत कसरत से करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद हम पर उसके नए मायने खुलने लगते हैं खुद ब खुद। अरबी न जानने के बावजूद मायने खुलने लगते हैं, ये उसका मौजज़ा है। ये हमारी बदनसीबी है कि हम तस्बीहात के पीछे भागते हैं, वज़ाइफ के पीछे भागते हैं, जिक्र अज़कार के पीछे भागते हैं। हमारा इसरार ये होता है जब कोई फकीर हमें ये कह भी दे कि आप कुरान पाक पढ़ा कीजिए कि वो तो ठीक है लेकिन तस्बीह बताइए कोई, हम ज़हनी तौर पर उधर रागिब नहीं है। जबकि रब तक पहुंचने का आसान तरीन रास्ता, कुर्बे इलाही के हसूल का आसान तरीन रास्ता कुरान पाक की तलावत कसरत से करना है। बाबा फरीद का फरमान यह है कि तलावत कलाम पाक दर हकीकत रब ताला से हम कलाम होना है। जब हम तलावत कलाम पाक कर रहे हैं तो हम रब ताला से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। बाबा फरीद साहब ही का फरमान यह है कि जो हम कुरान पाक की तलावत करते हैं तो उसके हर लफ्ज पर हजार साल की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। न सिर्फ ये कि हजार साल की इबादत के बराबर सवाब होता है, बल्कि इसके इक्विलेंट बदियां हमारी हमारे नामे अमाल से काट दी जाती हैं। अफजल तरीन इबादत फर्ज इबादत के अलावा मैं अर्ज कर रहा हूं, افضل ترین عبادت نفلی عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. کلام پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے. تو جب ہم پر قرآن پاک کے نئے معنی کھلنے لگیں گے تو ہماری فکر کی راہیں ہمیں دکھائی دے جائیں گی. تو جب ہم ان راہوں پر چلیں گے تو بالآخر وہ راستے ہمیں رب کی دوستی کے حصول کے مقام تک لے جائیں گے, رب کے قرب کے حصول کے مقام تک لے جائیں گے وہ راستے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر پائیں, اور وہ بھی کثرت سے. کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ حالت شکر کسے کہتے ہیں؟ فقیر پر یا کسی درویش پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں, ایک حالت شکر ہے اور دوسری حالت سہو ہے. یہ سہو سواد سے ہے, سین سے نہیں. حالت سہو میں فقیر اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے, اس کو اپنی ذات پر اپنے ذہن پر پورا کنٹرول اس وقت حاصل ہوتا ہے. جو سالک ہے وہ حالت سہو ہی میں رہتا ہے, ماسوا اس کے کہ کہیں زندگی میں دو چار موقع آ جائیں کہ وہ حالت جذب میں چلا جائے یا حالت شکر میں چلا جائے. حالت شکر وہ حالت ہے جہاں کسی فقیر اور درویش کا ذہن اس کے کنٹرول سے باہر چلا جائے, یا یوں کہیے کہ جہاں فقیر کا کنٹرول اس کی اپنی ذات سے ختم ہو جائے اور اس کی زبان سے کچھ الفاظ بغیر سوچے سمجھے ادا ہونے لگیں. تو جب اس کا اپنی ذات پر کنٹرول ختم ہو گیا تو پھر اسے یہ ہوش نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. فقیر سے درویش سے اس حالت میں دور رہنا زیادہ مناسب ہے, کیونکہ حالت صاحب میں کہی گئی بات تو اس نے سوچ سمجھ کے کہی ہے, اس سے نقصان نہیں ہوگا ہمیں. لیکن حالت شکر میں اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو وہ ٹلے گی نہیں, وہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی. اور عام طور پر وہ اس وقت جوش کی حالت میں ہوتا ہے, اس کی زبان سے الفاظ ایسے نکلتے ہیں جس سے نقصان ہی ہو جاتا ہے. تو حالت شکر اس کو کہتے ہیں جہاں درویش کا کنٹرول اپنی ذات پر سے ختم ہو گیا ہوتا ہے, وہ ایسے جذب میں ہوتا ہے اس وقت کہ اسے ہوش نہیں ہوتی کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, کر کیا رہا ہوں. اس وقت اس سے دور رہنا بہتر ہے. یہ جو بزرگ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے, ان سے ہم سنتے آئے تھے کہ فقیر سے دور رہنا بہتر. پتہ نہیں چلے گا انسان کو کہ وہ کس حالت میں ہے اس وقت. تو عقل مند لوگ فقیر سے دور رہتے ہیں کہ وہ چڑھ نہ جائے اور حالت شکر میں جا کر کچھ کہہ نہ دے. اتفاق ایک دوسرا سوال بھی یہی تھا کہ حالت شکر میں فقیر سے کیوں بچنا چاہیے, وہ تو میں جواب دے چکا. ایک ان کا سوال یہ ہے کہ کیا حالت شکر میں فقیر دعا بھی دے سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس حالت میں جو اس کی زبان سے لفظ نکلے گا وہ رب تعالیٰ پورا کر دیتا ہے, کیونکہ اس وقت وہ ایسے مقام پر ہوتا ہے جو یکجائی کا ہے, جہاں وہ رب کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے, کھویا ہوا ہے اس میں. تو وہاں جو اس کی زبان سے نکلا رب تعالیٰ پورا کر دیتا ہے, تو وہ اچھے الفاظ ہوں یا برے. لیکن سیف راستہ یہ ہے کہ فقیر سے دور رہا جائے, اس سے کم گفتگو کیجئے, جائیے اپنے مطلب کی بات کیجئے ایک آدھ جملے میں اور اٹھ کے چلے جائیے. فقیر بہت پیار کرے گا آپ سے, کیونکہ فقیر حالت استغراق میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی سوچ میں ڈوبا رہے, غور و فکر میں ڈوبا رہے, وہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے, کمپنی کو پسند نہیں کرتا, اس کے معاملات میں حرج ہوتا ہے. تو جب ہم فقیر کے سر پہ سوار رہتے ہیں या ये समझते हैं कि लंबी बात करके इससे हम फायदा ले लेंगे, दर हकीकत वो अंदर से अनॉय हो रहा होता है। फकीर से जितनी मुख्तसर से मुख्तसर बात की जा सके उतनी बात मुख्तसर कीजिए, देखिए आपको फायदे किस तरह आते हैं। ये किसी साहब ने सवाल किया है कि बंदा गुनाह से बचने की बहुत कोशिश करता है मगर उसका नफ्स उसके कंट्रोल में नहीं आता, क्या इसके लिए कोई वजीफा है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उस पर कंट्रोल हासिल कर सके? इस चीज को समझने के लिए हमें एक चीज पर गौर करना होगा, वो ये कि अल्लाह के दीन में गुनाह और सवाब, सजा और जजा, इसका निजाम। यही किसी महफिल में शायद जिक्र हुआ था कि सजा सिर्फ इख्तियार के जवाब में है, जहां किसी शख्स के पास इख्तियार नहीं है, जबर है, तो जबर के तहत हुई हुई किसी हरकत की कोई सजा नहीं है। वो जबर चाहे कदर का हो, तकदीर का हो, या जबर हालात का हो, हत्ता के मुसलमान को यहां तक की इजाजत दे दी गई है कि अगर जान बचाने के लिए उसको ये कहना पड़ जाए, अगरचे वो कमतर दर्जे का ईमान गिना गया, कि अगर उसे ये कहना पड़े कि मैं मुसलमान नहीं, तो उसकी इजाजत जान बचाने के लिए दे दी गई है, तो वो जबर है हालात का, यहां तक की इजाजत है। जान बचाने के लिए अगर खुराक हमारे पास नहीं है तो हम घोड़े का गोश्त खा सकते हैं, लेकिन उसी कदर जिस कदर के जान बचाने के लिए जरूरी रहे। यह हालात का जबर है। शराब ममनू है, लेकिन अगर ऐसी बीमारी लाहक हो जाए जिसका इलाज अल्कोहल में है, तो उतनी मिकदार जितनी उस बीमारी से निजात के लिए जरूरी है उतनी पीने की इजाजत दे दी गई है। यह हालात का जबर है। तो सजा इख्तियार की है, जबर के तहत कोई सजा नहीं है। अब अगर नमाज मुझ पर फर्ज की गई है तो मैं नमाजी होने के लिए अगर दुआएं कराऊं लोगों से, या वज़ाइफ पढ़ूं कि मैं नमाजी हो जाऊं, तो वहां तो फिर कमाल या दुआ का है या उस वजीफे का है, तो उसका जो इनाम है नमाज का असूली तौर पर, फिर उस दुआ को मिलना चाहिए या उस वजीफे को मिलना चाहिए जिसके तहत मैं नमाजी हो गया। नमाज से मुझे हटने के लिए कोई मैंने वजीफा पढ़ लिया तो गुनाह फिर उस वजीफे को होना चाहिए, मुझे तो ना हो कोई। लेकिन रब ताला ने तलकीन की कुरान में कि मुझे अपने नफ्स से लड़ना है, मुझे कोशिश करनी है नमाज के लिए, कि मैं नमाज पढ़ूं, मैं रोजा रखूं, अगर जितनी भी मेरी फर्ज इबादात हैं उसके लिए मैं कोशिश करूं, गुनाहों से बचने के लिए मैं अपने नफ्स से लड़ूं। रब ने यह नहीं कहा कि गुनाहों से बचने के लिए वजीफे करो, वो नफ्स से लड़ने का हुक्म दे रहा है। तो नफ्स को काबू में लाने का आसान तरीन तरीका फिर यह है कि अपने नफ्स से लड़ा जाए, अपने नफ्स की मुखालफत की जाए। हमारा नफ्स जो ख्वाहिश करता है उसके बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट हम चल पड़े, उसकी मुखालफत यूं हो जाएगी। तो जब हम अपने नफ्स से लड़ेंगे तो यह हमारी कोशिश की नहीं जाएगी, इसका सवाब है। यह हम उस राह पे आए हुए हैं जहां हम कोशिश को तर्क करके हम सिर्फ वजाइफ पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अपने औलाद की तरबियत मेरा फर्ज है, बहसियत बाप के मेरे ऊपर फर्ज है, मां पर फर्ज है। लेकिन आप किसी दुआ वाली जगह पर चले जाइए, वहां आपको लोग दुआ कराते मिलेंगे कि मेरा बच्चा नाफरमान हो गया है, दुआ कीजिए कि फरमाबरदार हो जाए। ये अपने फर्ज से पहलू तही है। मुसलमान अपने फर्ज से कभी पहलू तही नहीं करता, अपने फर्ज से भागता नहीं, फर्ज को पूरा करता है, चाहे वो फर्ज इबादात से मुतालिक है, चाहे वो फर्ज दुनियावी जिम्मेदारियों से मुतालिक है, तो वो अपने फर्ज को पूरा करता है। आप किसी दुआ वाली जगह पर चले जाइए, आपको लोग मिलेंगे, बल्कि सबसे खूबसूरत एक दुआ जिससे मेरा वास्ता पड़ा और वो शायद मेरी आइंदा जिंदगी में भी सबसे बेहतरीन दुआ रहेगी। एक साहब ने मुझसे कहा कि पोठोहारी जुबान में, जो झेलम और उससे आगे के इलाके में बोली जाती है, कि तुसनी माड़े की दुआ करो। मैंने कहा जी क्या दुआ करूं आपको? जी मैं जिस कारोबार ने हाथ लाना है वो कारोबार तबाह हो जाना है, तो लॉस बहुत है, तो तुसानी दुआ फरमाओ कि मेरे कारोबार फायदा हो जाए। तो मैंने कहा जी मैं जरूर हाजिर हूं आपकी खिदमत में, आप फरमाइए आप कारोबार क्या करते हैं? कारोबार तो कुछ ना करना जी। मैंने कहा अच्छा, तो क्या कारोबार करना चाहते हैं? माड़े की क्या पता है के कारोबार करा, तुसा नहीं दसो। तो मैंने कहा जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, कारोबार के बारे में जानना तो मेरे बस में नहीं है। फिर तुसा नहीं दसो कि दे को पता करा। तो मैंने कहा जनाब ऐसा कर लीजिए कि आपके मिलने वाले होंगे, उनमें जिनको आप ये समझते हैं कि वो बहुत समझदार हैं, आप उनसे पता कर लें। माड़े की किस्सा पता लग सी के कौन समझदार है कौन बेवकूफ है। मैंने सर ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा, तो अगर आप नहीं ये जान पाते कि आपके मिलने वालों में कौन समझदार और कौन बेवकूफ, तो आप एक काम कर लीजिए, आप इंटरनेट पे चले जाएं और वहां चेक कीजिए कि कोई कारोबार आपको पसंद आ जाए। ना तो सन मैं माड़े की ये दसो मैं इंटरनेट ते किसा जा सा। तो मैंने कहा वो बड़ा आसान काम है, आप यहां जो पास ही एक मार्केट थी उसका नाम लेकर मैंने कहा कि इस मार्केट में बहुत से इंटरनेट कैफे होंगे, आप चले जाइए, वो गालबन 10-15 रुपए आपसे चार्ज करेंगे, तो आपको इंटरनेट इस्तेमाल कर लेने देंगे। तो आप इंटरनेट पर टाइप कीजिए कि बिजनेसेस फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर, तो एक लंबी लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में से पिक कर लीजिए, तो 5-6 कारोबार जो आपको पसंद आए वो मेरे पास ले आइए, मैं दुआ करके आपसे अर्ज कर दूंगा कि ये आपके लिए बेस्ट सूटेड कारोबार है, वो कर लें। अच्छा चलो फिर ये भी करके देख लेने। अब बड़े बदले ना खासा उठ के वो साहब गए। अब मैं उन साहब को रन डाउन नहीं कर रहा या उनको मैं बुरा नहीं कह रहा, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मुझसे कहीं बेहतर शख्स थे वो। मैं बहुत देर से एक बात पर सोचता रहा कि ये मुसलमान का रवैया नहीं है कि हम कोशिश और मेहनत की राह छोड़कर हम अपने हाथ पांव को तोड़कर बैठ गए और हमने तकिया कर लिया है दुआओं और वज़ाइफ पर। इसी तरह एक बड़ी खूबसूरत दुआ एक साहब ने कराई जिसको उसे मैंने एंजॉय किया। इस पर तो मैं फिक्रमंद हुआ था कि हमारी सोच किस तरफ चली गई, लेकिन उसको मैंने एंजॉय बहुत किया था उस दुआ को। बहुत ही डिसेंट, बहुत सोबर और बहुत गुड लुकिंग शख्स नौजवान थे वो आए, उन्होंने कहा कि शाह साहब दुआ कर दीजिए कि मैं CSS में पास हो जाऊं। तो मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि पास होने का ताल्लुक तो आपकी मेहनत से है, रब ताला बड़ा मेहरबान है, जितनी हम मेहनत और कोशिश करते हैं उससे कई गुना ज्यादा बढ़ाकर अजर अता फरमा देता है, तो आप जितनी मेहनत करेंगे पास हो जाएंगे। नहीं वो मैं मेहनत तो कर रहा हूं, तो मैं दुआ के लिए कह रहा हूं कि आप दुआ कर दीजिए। तो मैंने पूछा कि वो आपका रिजल्ट कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि सब नवंबर 2014 में। मैंने ये अभी तो बहुत वक्त पड़ा, अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ आपका, तो रिजल्ट से एक वीक पहले आ जाइए तो मैं जरूर दुआ कर दूंगा। कि वो मुझे पता है कि आप एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आने में एक वीक रह गया तो आप दुआ करते हैं। तो मैंने कहा फिर भी आप एग्जाम देने से पहले चले आए। कहने लगे जी उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल ये है कि आप उस वक्त तक जिंदा नहीं होंगे जब तक रिजल्ट आएगा। तो आई रियली एंजॉयड इट, तो आई लव दैट मैन। तो ये दुआओं के हमारे किस्से कुछ ऐसे ही हैं, हमने अपने मयार कायम कर लिए हैं। मतलब वो बात बड़ी दूर चली गई। तो ये नफ्स को वज़ाइफ से ना ज़ेर कीजिए, बल्कि अपने नफ्स की मुखालफत कीजिए ताकि हम इस पे काबू पा सकें। और उसका आसान तरीन रास्ता यही है कि नफ्स जो कुछ कहे आप बिल्कुल उसके बरक्स कीजिए, 180 डिग्री अपोजिट, तो नफ्स काबू में आ जाएगा। तो अगली इतवार तक के लिए इजाजत चाहता हूं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मुलाकात होती बशर्ते जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम।